कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं कुछ जानकारी थोड़ी सी सलाह मुड़ जाए साथ हमारे
नमस्कार श्रोताओं, नई दिशा प्रोग्राम के छठे एपिसोड में हमेशा की तरह आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रेमा नेगी। और जगत
हाँ।
क्या कर रहे हो? हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है।
अरे अरे प्रेमा रुको, बाबा रुको, मैं कुछ सोच रहा हूँ।
ऐसा क्या सोच रहे थे तुम कि कार्यक्रम शुरू करना ही भूल गए?
प्रेमा मैं सोच रहा था कि अगर कुछ जरूरी बातें पता ना हो तो जिंदगी में कई बार जानकारी का ये अभाव कितना भारी पड़ जाता है।
मतलब?
अब जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे बहुत तमन्ना थी हायर स्टडीज के साथ प्रोफेशनल कोर्स करने की, लेकिन उसे इस बारे में पूरी तरह से कुछ मालूम ही नहीं था और वो फंस गया किसी दिखावटी इंस्टीट्यूट के चक्कर में।
ओहो, फिर क्या हुआ?
फिर क्या होना था प्रेमा, वो आज तक एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा है। अगर सही वक्त पर उसे सही जानकारी मिल जाती तो उसकी जिंदगी आज कितनी अलग होती ना।
बिल्कुल, इसीलिए तो है हमारा ये कार्यक्रम नई दिशा, ताकि कम से कम HIV के बारे में हमारे श्रोताओं के बीच जानकारी का कोई अभाव ना हो।
जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सभी दुर्घटनाओं से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन उन दुर्घटनाओं को कम तो किया ही जा सकता है जो जानकारी ना होने के कारण होती हैं।
जैसे विंडो पीरियड के बारे में सही जानकारी,
जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं आज के अगले सेगमेंट जानो अनजाने में।
जगत, क्या तुम्हें पता है ऊपरी जांच और देखभाल लेने से हमें मालूम नहीं पड़ता कि किसी के शरीर में HIV विषाणु प्रवेश कर गया है, मगर शरीर में घुसते ही HIV अपना विनाश कार्य शुरू कर देता है।
वो कैसे?
जब किसी भी बीमारी के तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है और उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू करता है।
तो
जिस तरह दूसरी बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं, उसी तरह जब HIV हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो HIV के खिलाफ भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं।
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारा शरीर अन्य बीमारियों की तरह HIV के वायरस से भी लड़ने की कोशिश करता है?
बिल्कुल सही, मगर सबसे जरूरी बात यह है कि HIV का पता लगने के लिए जो खून की जाँच होती है वो टेस्ट एंटीबॉडीज को ही जाँचता है, और इनका किसी के शरीर में होना ही HIV के होने की निशानी है।
मगर प्रेमा, अभी तक तुमने विंडो पीरियड की बात तो कही ही नहीं।
वही बात तो कह रही हूँ जगत, वायरस के खिलाफ शरीर में इतने एंटीबॉडीज बन सके कि वो टेस्ट में आए, इस प्रक्रिया में 10 से 12 हफ्ते तक का समय लग जाता है और इसी समय को विंडो पीरियड कहते हैं।
अच्छा प्रेमा, मान लो कि अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो फिर उसे HIV टेस्ट कब करवाना चाहिए?
तुरंत, और इसके लिए डॉक्टरी सलाह तो जरूरी है ही, मगर कई बार तुरंत टेस्ट करवाने पर टेस्ट नेगेटिव भी आता है, क्योंकि शरीर में तुरंत प्रतिरोधक तत्व यानी एंटीबॉडीज विकसित नहीं हुए होंगे।
भाई ये तो बड़ी खतरे वाली स्थिति हुई।
इसीलिए तो कह रही हूँ कि डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर इसमें यही सलाह देते हैं कि विंडो पीरियड के दौरान कॉन्डोम के बिना यौन संबंध न बनाए।
अच्छा।
और 12 हफ्तों बाद फिर HIV टेस्ट करवाए, ताकि व्यक्ति का सही तरह से HIV स्टेटस पता लग सके।
तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे पिछले एपिसोड के विजेता का नाम बताने का
और अपनी जानकारी को आजमाने का,
हमारे क्विज सेगमेंट भेजा फ्राई का।
और पिछले हफ्ते का हमारा भेजा फ्राई सवाल था, HIV को एड्स की दशा में परिवर्तित होने में कितना समय लगता है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्यतः 5 से 8 साल, और ये समय अवधि ज्यादा भी हो सकती है।
और एपिसोड 1 का सही जवाब देकर पुरस्कार जीतने वाले भाग्यशाली विजेता है मिस्टर रोकोव नागालैंड से, और एपिसोड 2 के विजेता है मिस्टर रिंचेन ले लद्दाख से।
आपको मिलती है एक कूल भेजा फ्राई कैप। और अब सुनते हैं आज का सवाल।
और आज का सवाल है, क्या एक HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को HIV संक्रमण से बचाया जा सकता है? सवाल फिर से सुनिए, क्या एक HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को HIV संक्रमण से बचाया जा सकता है? और आपके ऑप्शन हैं ए, एक HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ के बच्चे को HIV से कभी नहीं बचाया जा सकता। बी, सही समय पर एंटी रेट्रोवायरल दवाइयों की सही खुराक से बच्चे को HIV संक्रमण से बचाया जा सकता है। सी, HIV संक्रमित महिला को बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और डी, HIV वायरस का संक्रमण माँ से बच्चे को नहीं होता। अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए, एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती माँ के बच्चे को एचआईवी से कभी नहीं बचाया जा सकता। बी, सही समय पर एंटी रेट्रोवायरल दवाइयों की सही खुराक से बच्चे को एचआईवी संक्रमण से बचाया जा सकता है। सी, एचआईवी संक्रमित महिला को बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और डी, एचआईवी वायरस का संक्रमण माँ से बच्चे को नहीं होता।
थैंक यू क्विज मास्टर जी। सही जवाब देने वाले श्रोता को मिलेगा एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप। तो उठाइए अपना मोबाइल और SMS कीजिए सही जवाब।
हमारा नंबर है 9717678223। जवाब देने के लिए अपने मोबाइल से SMS करें ND6 भेजा फ्राई स्पेस ऑप्शन ABC या D टाइप करें और भेज दें 9717678223 पर।
और अब इंतजार खत्म होता है आज के मेहमान का। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता और उन्हीं से सुनते हैं उनका परिचय।
मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ, दिल्ली सरकार में पिछले 21 साल से कार्य कर रहा हूं और पिछले 2 साल से दिल्ली स्टेट्स एड कंट्रोल सोसाइटी में एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं।
गुप्ता जी, HIV टेस्ट करवाना क्या जरूरी है और क्या ये सभी को करवाना चाहिए?
HIV टेस्ट जैसे कि और टेस्ट होते हैं ब्लड के, जैसे हीमोग्लोबिन है या जॉन्डिस का टेस्ट है या मलेरिया का टेस्ट है, उसी प्रकार से टेस्ट किया जाता है। एक साधारण खून का टेस्ट है। और जहाँ तक ये सवाल कि ये टेस्ट किन्हें करवाना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग हैं यौन कर्मी और जो पुरुष से सेक्स करें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे की दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में जिनका सेवन करें और आपस में निडल शेयर करें, यानी कि एक ही सिरिंज से कई लोग इंजेक्शन लगाएं। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी है जो अपने घर में कम टाइम रहती है और घर से बाहर ज़्यादा टाइम रहती है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर्स, वो अपने घर महीने में एक या दो बार आ पाते हैं तो मजबूरन उनको जो है बाहर सेक्स करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिला है उनको अपनी HIV की जाँच जरूर करानी चाहिए। जिन लोगों को यौन रोग होते हैं, जैसे मान लो कि किसी को पेशाब के रास्ते जलन हो या पेशाब के रास्ते मवाद आए या कोई गांठ हो जाए जांघ के अंदर, इसके अलावा जो भी TB का मरीज है, क्योंकि उसको TB तो अब नज़र आ रही है कि TB हो गई है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर HIV इन्फेक्शन छुपा हुआ हो जिसकी वजह से उसको TB हो गई है, तो सारे TB के मरीजों को भी इसकी जांच करानी चाहिए।
वॉलंटरी काउंसलिंग और टेस्टिंग के कंसेप्ट को जरा स्पष्ट करेंगे डॉक्टर साहब?
जब ये प्रोग्राम 94-95 में लॉन्च हुआ था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दूसरा फेज था, उस दौरान VCTC सेंटर के नाम से सेंटर खोले गए थे। इनका फुल फॉर्म था वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। 2007 से इसका नाम बदल के ICTC सेंटर कर दिया, NACP की थर्ड फेज के अंदर। उसका मतलब है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। मतलब यह था कि अपनी इच्छा से लोग आगे आएं और टेस्ट करवाएं अपना HIV का।
आपने जो जानकारियां हमारे नई दिशा के श्रोताओं को दी, आशा करते हैं वो जरूर इसका फायदा उठाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई दिशा, जिसका मकसद HIV पर सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। और अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आपकी बात।
और आज का पत्र जो हमारे श्रोता अनीता जी ने मीठापुर दिल्ली से लिखा है, वो पूछती है कि HIV और एड्स में क्या अंतर है। अनीता जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि HIV एक विषाणु है, यानी एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स बीमारियों से ना लड़ पाने की अवस्था, यानी एक सिंड्रोम है।
दरअसल HIV एक ऐसा विषाणु है जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ती हैं। HIV इनकी मात्रा को कम करता रहता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है, और साधारण बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, दस्त वगैरह, इन्हें भी ठीक होने में एक लंबा समय लग जाता है।
और धीरे धीरे HIV ग्रस्त व्यक्ति एड्स की स्थिति तक पहुंच जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV से जुड़े कोई सवाल हो जिनका आप जानना चाहते हो जवाब, तो आप हमें यूं ही पत्र लिख सकते हैं।
और यदि कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपनी राय देना चाहते हो तो उसका भी हम स्वागत करते हैं।
हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा। और यदि आप चाहें तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और अब समय है हमारे साप्ताहिक धारावाहिक जिसका नाम है जीवन की राह।
रेडियो धारावाहिक जीवन की राह में अब तक आपने सुना कि जयपाल मुंबई शहर में पिछले 5 सालों से टैक्सी ड्राइवर है और गांव में अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों और माँ बाप को छोड़कर शहर आया है। घर से बेखबर वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर नशा करता है और यौन कर्मियों के साथ जोखिम पूर्ण व्यवहार भी करता है।
शहर में ही सूरज सिंह, जो जयपाल के बचपन का दोस्त है, एक दूसरे टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर है और वो अक्सर अपने गाँव आता जाता रहता है और फोन से भी अपनी पत्नी धनवंती से बात करता है। धनवंती और जयपाल की पत्नी लक्ष्मी आपस में अच्छी सहेलियां हैं। धनवंती और सूरज की किशोर उम्र की बेटी है रबिता, जो कि गांव के ही स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में ही सुमन उसकी सबसे करीबी सहेली है, जो कि स्कूल के जाने माने टीचर राजन की बेटी है। राजन की पत्नी शीला उसकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि राजन की पहली पत्नी की एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। सुमन अपने पापा राजन की दूसरी शादी से नाखुश है, जिसके कारण शीला के साथ उसका व्यवहार भी ठीक नहीं रहता।
और राजन स्कूल के बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाने पर जोर देता है ताकि बच्चे किताबी ज्ञान में ना बंद कर रह जाएं। मगर उनका ये तरीका स्कूल के कई टीचरों को पसंद नहीं और वो अक्सर प्रिंसिपल नेगी को भड़काते रहते हैं। प्रिंसिपल नेगी भी राजन को पसंद नहीं करते। रबिता और सुमन की ही क्लास में है मोहित, जो कि मन ही मन सुमन को चाहता है और इस बात को लेकर उसके साथी शंकर और सुरेंद्र उसे चिढ़ाते रहते हैं। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
जयपाल, ओ जयपाल।
आ भाई रमेश, बोल भाई, कैसे आना हुआ?
अरे भाई जयपाल, इतने दिनों से कहाँ गायब हो? अरे क्या काम पर नहीं आना है तुमको?
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई, बस तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाया हूँ।
क्यों, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ?
पता नहीं यार, हर दूसरे चौथे रोज बुखार चढ़ जाता है। अब शरीर में कमजोरी लग रही है और ऊपर से उल्टी, दस्त से बुरा हाल है।
अरे तो तू डॉक्टर के पास गया कि नहीं?
हाँ यार, आज जाने की सोच रहा हूँ भाई, कल तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी।
चला जा भाई, चला जा, और शरीर के मामले में लापरवाही करना तो बिल्कुल ठीक नहीं होता।
हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। अच्छा रमेश भाई, तू मालिक से कह देना यार, एक दो दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं फिर बिना नागा किए काम पर आऊंगा भाई।
ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन मालिक मानेगा नहीं। तू पहले ही बहुत छुट्टी ले चुका है। अच्छा मैं चलता हूँ, वरना मुझे भी देर हो जाएगी। और हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखा लेना।
अरे लक्ष्मी, अच्छा किया तूने जो रास्ते में ही मिल गई, वरना देर हो जाती।
अब आधे घंटे पहले से घर में तैयार होके बैठी थी। वैसे धनवंती, ये बता कि जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब महिला समूह में, वहाँ होता क्या है?
कुछ तो स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाएं और कुछ अपने हक को समझने की बातें। एक बार महिला दल से जुड़ जाओ तो फिर कभी नहीं लगता कि हम अकेले हैं। ये ले, हम तो पहुंच भी गए।
शांत बहनों, शांत, आराम से बैठिए। देखिए, आप सभी लोगों ने रजिस्टर में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाई ली होगी और इस महीने के पैसे भी जमा करवा देना। आप सभी लोगों को मालूम है कि लाजवंती के पति की बीमारी में बहुत खर्चा हो गया, इसलिए हमने उसे इस महीने 7,000 रूपए की धनराशि दी है।
7,000 रूपए, ये कौन दे रहा है धनवंती?
हम सब लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, फिर जिसे जरूरत होती है ना, उसे इकट्ठे पैसे मिलते हैं।
लेकिन धनवंती,
अरे अरे चुप, आभा मैडम कुछ बता रही हैं।
हाँ तो बहनों, ये बताओ, आप सभी बहनों में किस किस को पता है कि यौन रोग क्या होते हैं?
मैडम जी, मैंने सुना है कि यदि साफ सफाई पर ध्यान ना दें, मेरा मतलब है कि वो उस जगह की, तो हमें ये रोग हो सकते हैं।
अच्छा, तुम्हें किसने बताई ये बात?
जी वो पिछली बार मेरे पति शहर से आए थे तो उन्होंने इस बारे में बताया था। मेरा जवाब सही नहीं है क्या मैडम जी?
नहीं नहीं, अरे आप लोग ऐसे क्यों हंस रही हैं? शांत हो जाइए। अरे धनवंती और उसके पति ने इस बारे में चर्चा की तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो धनवंती, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर साफ सफाई न रखने के कारण केवल प्रजनन अंगों में रोग होते हैं, मगर यौन रोग प्रजनन अंगों के इन्फेक्शन से अलग होते हैं, क्योंकि ये हमारे यौन व्यवहार से संबंध रखते हैं।
वो किस तरह मैडम जी?
देखो, जिसे हम लोग अपने शब्दों में यौन रोग या गुप्त रोग कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में इसे STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलते हैं।
अच्छा मैडम जी, ये बताइए कि किसी को जब ये रोग होते हैं तो इसके कुछ लक्षण भी तो सामने आते होंगे, जिससे पता लग जाए कि ये परेशानी हुई है।
अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात पूछी है धनवंती ने। देखो, कुछ यौन रोग ऐसे होते हैं जिसके होने पर इनके लक्षण तुरंत सामने आने लगते हैं, मगर ऐसा सभी यौन रोगों में नहीं होता है, खासकर महिलाओं में। इसलिए अगर हमारे पति को यौन रोग जैसी कोई शिकायत है तो दोनों को इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में यौन रोग के लक्षण अक्सर आसानी से दिख जाते हैं। फिर भी STI के आम लक्षण हैं, जैसे पेशाब में जलन, यौन अंगों में सूजन और योनि से बदबूदार स्राव। अच्छा चलिए, अब सब लोग उठ जाइए और 5-5 के गुटों में बैठ जाइए। चलिए, हाँ आप उधर चलिए, आप इधर हटिए। देखिए ये है चार्ट पेपर, इस पर अब हम अपने शरीर की संरचना को समझेंगे।
देख भाई मोहित, तू चाहे जितना भी सुमन को मन ही मन चाहता हो, लेकिन जब तक तू उसे अपने मन की बात कहेगा ही नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी?
लेकिन यार शंकर, ये उससे कहेगा कैसे? उसके सामने आते ही इसकी बोलती बंद हो जाती है। ऊपर से सुमन के साथ हमेशा उसकी सहेली रविता पूंछ की तरह चिपकी रहती है।
देख सुरेंद्र, अगर भाई ये सब सोच के ही चुप रहा तो इस जन्म में तो होली इसकी बात सुमन से। अरे अब क्या सोच रहा है, कुछ बोल तो सही, सांप सूंघ गया क्या?
क्या बोलूं यार, मेरी तो हालत धोबी के कुत्ते सी हो गई है, जो ना घर का है
ना घाट का।
सच, बात करना भी चाहता हूँ पर हिम्मत ही नहीं होती। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं उससे बात करना ही क्यों चाहता हूँ।
अब ये सब सोचने का टाइम गया मेरे यार, जब ओखली में सर दे ही दिया है तो अब मूसल से क्या डरना।
भाई वैसे डरने की बात तो है सुरेंद्र, मास्टर की बेटी है, कहीं राजन सर को पता लग गया तो स्कूल से नाम कटने का पूरा पूरा चांस है बेटा। ये प्यार तो तेरे लिए तलवार की धार पर चलने जैसा है।
लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे बात सुमन तक पहुंच भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, हाँ जब तक कि सुमन ना बताए।
अच्छा वो कैसे?
सुमन को चिट्ठी लिखकर।
क्या? प्यार मोहित करता है तो चिट्ठी तू क्यों लिखेगा भाई?
अबे मोटे दिमाग, चिट्ठी मोहित ही लिखेगा और उसमें लिखेगा अपने मन की सारी बात। मौका देखकर क्लास में उसकी किताब में चिट्ठी डाल देंगे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और सुमन को इसके दिल की बात पता भी लग जाएगी।
आइडिया तो बुरा नहीं है यार, क्यों मोहित?
हाँ मगर इससे बात बनेगी?
वैसे कौन सा बनी है, हो सकता है ऐसे ही बन जाए। बोल क्या कहता है?
ठीक है यही करते हैं।
तो भाई अब बिंदास होकर लिख दे दिल की बात कागज पर।
लीजिए मास्टर साहब, आपकी चाय तैयार है। आप गांव के पहले आदमी होंगे जो सोने के वक्त चाय पीते हैं।
लाइए शीला जी, लाइए। भाई वाह, उम्मीद है कि अब आप अपने रसोई के सारे कामों से फ्री हो गई होंगी।
जी हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप बताइए, कुछ काम है?
क्यों, कुछ काम हो तभी साथ बैठ सकते हैं क्या?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या बात है?
शीला, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि गांव में एक ऐसा केंद्र खोलें जहाँ सभी गांव वासियों को यौन शिक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी जानकारी मिल सके, ताकि वो सही जानकारी के साथ अपने जीवन को खुशहाल बना सके।
सोच तो अच्छी है, मगर इस विषय में काम करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, और वो भी इस गांव में।
मैं जानता हूँ शीला, मगर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और तुम्हारे जैसी समझदार पत्नी अगर मेरे साथ है तो फिर क्या चिंता है? क्या तुम इस काम में मेरा साथ नहीं दोगी?
क्यों नहीं, मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, मगर कई दिनों से मुझे एक चिंता रहती है।
चिंता? कैसी चिंता?
सुमन को लेकर।
सुमन को लेकर?
हाँ, आजकल उसका व्यवहार मेरे प्रति और खराब होता जा रहा है।
क्या?
मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही, मगर कभी कभी तो मेरे लिए ये सब सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
मगर इसका हल तो तुम्हें खुद ही निकालना होगा शीला, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बारे में सुमन से कुछ भी बात की तो वो समझेगी कि तुमने उसकी शिकायत मुझसे की है। बात और बिगड़ सकती है।
नहीं नहीं, आप इस बारे में उससे कोई बात ना करें। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है, सुमन के इस व्यवहार का कारण घर में उसका अकेलापन भी तो हो सकता है।
तो इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं?
घर में एक नया मेहमान लाकर।
नया मेहमान? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम माँ बनना चाहती हो?
क्यों, आप पिता नहीं बनना चाहते? हाँ।
जगत, मुझे लगता है कि एक सफल वैवाहिक जीवन कैसा हो ये हमें राजन और शीला से सीखना चाहिए।
सही कहा प्रेमा। वैसे वैवाहिक जीवन की सफलता का मंत्र भी यही है कि जब भी कोई बात एक से बिगड़े तो दूसरा उसे संभाले।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
दोस्तों, अब हम आ गए हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में, यानी क्या किया जाए में। तो जगत, आज तुम ऐसी कौन सी घटना से परिचित करवाने जा रहे हो जो सभी के लिए मिसाल बनी?
प्रेमा, दरअसल ये एक नाट्य दल की बात है जिन्होंने HIV के बारे में जानने के बाद ये देखा कि उनके शहर के लोगों में HIV के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। तो एक जिम्मेदार युवा होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज समझा लोगों को जागरूक करना। पहले तो उन्हें घर में ही काफी अड़चनें आईं। यही नहीं, लोगों ने उनके शोज को भी नहीं देखा, लेकिन उन सब युवाओं ने हार नहीं मानी। कॉलेज, पिक्चर हॉल, इन सबके पास कई जगहों पर वो नाटक करते, HIV के बारे में जानकारी देते। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, कई NGOs ने भी उनका साथ दिया। यही नहीं प्रेमा, प्रशासन भी उनकी मदद के लिए सामने आया और उनकी जलाई जागरूकता की एक लौ से चलते चलते जन जागरण की एक मशाल बनी।
वाकई में जगत, ये है वो जज्बा जो हर आदमी को एक महान आदमी बनाता है।
और जाते जाते हम आपको बता दें कि आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से हो रहा है। और साथ ही हम आभारी हैं अपने साथियों हेवलवानी सामुदायिक रेडियो और मंदाकिनी की आवाज के, और दिल्ली मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं के।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और रखिए अपना ध्यान।
नमस्कार।